ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय 17। अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। श्लोक संख्या 6 और 7। 6 का तात्पर्य नहीं है तो मैं ही केवल पढ़ूंगा, 7वां पढ़ेंगे साथ साथ। चित्रकेतुर्वाच हे श्लोक गुरु साक्षम धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य समयाम मिथुने भूय भार्याम। चित्रकेतु ने कहा शिव जी समस्त जगत के गुरु हैं और देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी ये कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच में वे अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। आप श्लोक संख्या 7 मेरे पीछे बोलिए। जटाधर अस्थि मृत ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतिरे प्राकृतो यथा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम कथा प्रसंग को समझेंगे। तो कथा ये चल रही है कि चित्रकेतु जो राजा थे सूरसेन देश के, यानी इसको हम कहें मथुरा मंडल, जो 84 को उसका मथुरा मंडल है वही सूरसेन देश, तो वहां के राजा थे और उनके ऊपर कृपा हुई शंकरसेन भगवान की, तो अभी वो विद्याधरों के राजा बन गए हैं। पहले मनुष्यों के राजा थे, अब विद्याधरों के राजा बन गए हैं और विमान में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, बहुत सी स्त्रियों के बीच में हैं, वो भी बहुत सी स्त्रियों के बीच में हैं, विमान में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने कैलाश पर्वत में जब उनका विमान जा रहा था तो देखा कैलाश पर्वत में शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी बैठे हुए हैं तो यहां वर्णन आ ही रहा है कि कैसे बैठे हुए हैं, ब्रह्मवादियों के सभा के पति हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में चित्रकेतु ने जो है ये शिकायत की, शिव जी के विषय में शिकायत की, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की। चित्रकेतु शिव जी के उच्च पद से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि कितना आश्चर्य है कि शिव जी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान शिव जो अनुवाद किया गया है मैं इसको शिव जी बोलता हूँ ना, क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश में तो कुछ अंतर रखा है, है? जैसे कि लॉर्ड शिवा प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हिम शब्दों का प्रयोग होता है तो कृष्ण के लिए वो कैपिटल एच होता है, लेकिन शिव जी के लिए कैपिटल एच नहीं होता है, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवान शिव, तो अंतर समझाने के लिए हम भगवान शिव की जगह शिव जी पाठ करने ज्यादा अच्छा है, जिससे कि अंतर कुछ पता चले, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं कि चित्रकेतु शिव जी के उसे पद से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि कितना आश्चर्य है। तो प्रभुपाद यहाँ राजा चित्रकेतु की बात का समर्थन कर रहे हैं, चित्रकेतु की बात का समर्थन कर रहे हैं, है ना। और कारण क्या है, चित्रकेतु क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि इसके पिछले जन्म में वो मनुष्य में राजा रहे, तो राजा को जो है शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा ये कहा जाता है। तो राजा के रूप में भी बहुत ही वे सतर्क थे कि कैसे शिष्टाचार के नियमों का पालन किया जाए, है ना। तो जब राजा होते हैं सभा के बीच में तो ये विधि नहीं है कि स्त्री को जो है गोद में रखें और जो है इस तरह सभा में बैठे हैं, मनुष्य की सभा में बैठे हैं, है ना। लेकिन यहां पर अभी वो विद्याधरों के राजा हैं और बहुत सी स्त्रियों के साथ बैठे हैं विमान में, एक ही विमान में बैठे हुए स्त्रियों के साथ में। लेकिन इसमें एक बात यह है कि वो किसी स्त्री का आलिंगन नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री को गोद में नहीं बैठाए हुए हैं, बल्कि स्त्रियों के बीच में वो घिरे हुए हैं चित्र के दूर, और क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा को अगर केंद्र बनाया जाए तो स्त्री पुरुष में जो संबंध है वो वास्तविक हो सकता है। तो कृष्ण को केंद्र बनाया जाए या कृष्ण कथा को केंद्र बनाया जाए तो स्त्री पुरुष का जो संबंध है वास्तव में वो असली संबंध होता है, प्रेम संबंध होता है। और अगर कृष्ण कथा या कृष्ण को केंद्र ना बनाया जाए तो फिर वो काम वासना होती है। तो महाराज चित्रकेतु जो है विद्याधर का उनको शरीर प्राप्त हो चुका है और वे जो है स्त्रियों के बीच में बैठे हुए हैं ना। लेकिन यहां पर शिवजी बैठे हुए हैं पुरुषों की सभा में, चित्रकेतु अपने विमान में एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। लेकिन शिवजी जहां बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत में, तो उनका सत्संग प्राप्त करने के लिए बहुत से सिद्ध हैं, चारण हैं, वो सब बैठे हुए हैं। और शिवजी यहां पर क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं। ब्रह्मवादी सभापति है ना, तो ब्रह्मवादियों के सभा के पति हैं ना। तो यहां प्रभुपाद जी जो है ब्रह्मवादी शब्द का अर्थ क्या लिखते हैं, वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायी ब्रह्मवादी। तो जो वैष्णव हैं वो भी जो है ब्रह्मवादी होते हैं। वैष्णव में भी जो है एक सहजिया नाम का एक वर्ग है जो कि वैष्णवों के नाम को कलंकित करने वाला है। जो सहजिया लोग होते हैं तो वे जो है राधा कृष्ण के प्रेम को एक सरल चीज बना लेते हैं, जबकि हम लोग क्या मानते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम सरल चीज नहीं है समझना, है ना। और नकल करना तो किसी भी तरह से सही नहीं है, बहुत ही गलत है। गोपियों के साथ जो कृष्ण के संबंध थे उनको समझना आसान नहीं है, लेकिन सहजिया लोग जो है उसको सहज बना लेते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि नकल करने से हमें वो प्राप्त हो जाएगा, वो स्त्री प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो गोपी गोपियों के साथ कृष्ण का जो संबंध है उसकी वो नकल करते हैं, तो नकल तो नहीं कर सकते वो, बल्कि वो जो है काम वासना में वो जो है बंधे हुए हैं, और भक्ति के नाम पर वो व्यभिचार करते हैं, और खुला उनका जो है व्यभिचार होता है। तो इस प्रकार से जो सहजिया लोग हैं वो वैष्णवों को कलंकित करने वाले हैं, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले इन लोगों को उजागर किया कि ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है, ये अप संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु से अपने को ये जुड़ा बताते हैं, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं। तो भक्त विनोद ठाकुर ने सहजिया और इस तरह के और भी कई संप्रदाय 13 कुल मिलाकर के हैं, दरवेश, सखी, भेखी, है ना, है चूड़ाधारी, हाँ। तो ये सब जो है मतलब क्या है कि अप संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है। तो यहां ब्रह्मवादी शब्द का जो है प्रभुपाद जी प्रयोग कर रहे हैं वैदिक नियमों के कट्टर में आए कि शास्त्रों के अनुसार जो आचरण बताया गया है तो जो वैष्णव है वो हमेशा उसी प्रकार से आचरण करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते हैं। इस नाम पर कि अब हम जो है वैष्णव हो गए या हम बहुत ऊंचे स्तर पर आ गए हैं इसलिए हम नियमों को तोड़ सकते हैं, तो ये कभी भी ये जो बात है ये वैष्णव नहीं होती है। तो इनको कहते हैं ब्रह्मवादी, है ना। तो ब्रह्मवादी तो यहां पर ऊपर लिखते हैं कि तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं चित्रकेतु शिवजी के उच्च पद से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि कितना आश्चर्य है कि शिवजी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने ये देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो प्रभुपाद का जो है कहना यह है कि अपनी स्थिति के अनुसार महाराज चित्रकेतु कोई गलती नहीं कर रहे थे, महाराज चित्र की तो कोई गलती नहीं कर रहे थे, उन्हें जो कुछ कहना था जिस तरह से कहना था वो वही कह रहे थे, उसी प्रकार से कह रहे थे। और शिष्टाचार का भी पालन कर रहे थे, पूरी तरह से शिष्टाचार का पालन कर रहे थे। और शिष्टाचार क्या है कि किसी व्यक्ति का आप निंदा करते हैं तो उसके गुणों को भी देखिए। तो शिव जी के वो गुणों को देख रहे थे और फिर आश्चर्य कर रहे थे। तो ये निंदा नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। तो कभी कभी जो है कोई बड़े भक्त होते हैं, उनमें अगर कुछ विपरीत आचरण देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभु जी आप में ऐसा आचरण कैसे दिखाई दे रहा है, आपके अंदर तो ये गुण है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है ना। तो ये विधि है, बात करने की जो विधि है वो यही है। और महाराज चित्र के तो पूरी तरह से परिचित थे कि बड़े लोगों के सामने कैसे बात करना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जो है ये लिख रहे हैं कि उन्होंने शिव जी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने ये देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि चित्र के तुने शिव जी की आलोचना की किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने जो है जिस तरह से अपमान किया था शिव जी का, तो चित्र के तुने नहीं किया। तो हमारा जो ईस्ट कैलाश का मंदिर है वहां पर वो कथा चल रही है, दक्ष चौथे स्कंद में जो दक्ष और शिव जी का चरित्र है तो वो चल रहा है वहां पर, और यहां पर जो है ये बात आ गई तात्पर्य में। तो वास्तव में दक्ष ने जो है जैसा व्यवहार किया था वो बहुत ही अनुचित था, शिष्टाचार के विरुद्ध था। तो चित्र के तो महाराज जो है शिव जी के जो गुण बता रहे हैं उन्हीं को दक्ष ने दोष बताया, आप समझ रहे हैं, दक्ष ने इन्हीं को दोष बताया, है ना। दक्ष ने क्या कहा कि ये जो है शंकर जो है ये जटा धारण करने वाला है, भस्म धारण करने वाला है, श्मशान में घूमता है, नग्न रहता है, मतलब कहने का ये है कि इंद्रिय तृप्ति से जितना विरक्त है उतना ही इसमें दोष, ये दोष है। दक्ष का जो सिद्धांत है वो है कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति करना, जीवन का लक्ष्य। तो इंद्रिय तृप्ति के विचार से शिव जी में जो है सब प्रकार के दोष ही दोष हैं, किसी काम के नहीं है शिव जी, बेकार है ये। तो दक्ष ने इस बात से जो है शिव जी की निंदा की थी, लेकिन चित्र के तो जो है शिव जी इन बातों की प्रशंसा करें कि शिव जी जब कैसे हैं। तो दक्ष ने कहा कि मैंने अपनी लड़की दे दी इसको, तो अपनी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, मेरी लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, कि उसको जो है कुछ भी सुख नहीं मिलेगा शिव के साथ में, क्योंकि ये जो है एकदम विरक्त है, बेकार है। ऐसा पति होना चाहिए जिसके पास खूब भोग की सामग्रियां हो, खूब ऐश्वर्य हो, धन संपत्ति हो, और इंद्रिय तृप्ति करे, भोगे, तो हमारी लड़की सुखी रहती। लेकिन ये जो शिव है ये तो भोगों से बिल्कुल विरक्त है, तो मैंने अपनी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन इसमें भी मेरी गलती नहीं है, ब्रह्मा जी की गलती है, ब्रह्मा जी कहने से मैंने किया। तो वो दोष जो है ब्रह्मा जी के ऊपर डाल दिया, अपना स्वयं जो है बिल्कुल निर्दोष हो गया, जितना दोष है वो शिव जी का है, और अगर कुछ और भी दोष है तो ब्रह्मा जी का है, लेकिन मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत ही गलत और कठोर शब्दों का प्रयोग किया दक्ष ने, तो वो तो बहुत ही गलत था, है ना। तो यहां पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चित्र के तुमने जो है ऐसा व्यवहार नहीं किया, है ना। लेकिन फिर भी उनको सांप मिल गया, आगे चलकर के पार्वती सांप दे देंगी, है ना। तो इसको तो फिर यही समझना चाहिए कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना किसी कारण के अपने को कुछ अनिष्ट हो जाता है, अपने लिए कुछ अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट घटनाएं घट जाती हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें जो कारण है वो प्रारब्ध का ही समझना चाहिए, प्रारब्ध का कारण है। इसमें अपना कुछ कर्म नहीं बना, तुम्हारा चित्रकेतु का कोई कर्म नहीं बन रहा था, कोई अपराध नहीं बन रहा था, कोई दोष नहीं बन रहा था, है ना। तो यहां पर आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्रील विश्वनाथ, हाँ ये हो गया। इसके बाद दक्ष ने तो शिवजी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिव जी की इस प्रकार आसीन होने पर ही आश्चर्य व्यक्त किया है। तो बहुत अच्छा ये मतलब विषय है, बड़ा रोचक विषय है। दक्ष की तुलना चित्रकेतु से कर रहे हैं प्रभुपाद। तो दक्ष ने जो है शिव जी को नगण्य मान लिया था, दक्ष ने क्या सोचा था कि ये मेरे दामाद बन गए हैं, तो अब ये मेरे पुत्र के समान हो गए हैं और मैं पिता के समान हो गया हूं, अब इनका फर्ज है कि मेरा सम्मान करें। दक्ष ने सोच लिया था, लेकिन दक्ष को पता था कि शिव जी सीनियर हैं, उनसे बहुत बड़े हैं। शिव जी जो है ब्रह्मा जी से जब उन्होंने जन्म लिया था तो चार कुमारों के बाद शिव जी ने जन्म लिया था, और उसके बाद फिर जो 10 पुत्र हुए उनमें नारद हैं, दक्ष हैं, अंगिरा हैं, भृगु हैं, ये सब 10 पुत्र जो है ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुए। तो शिव जी तो बहुत मतलब सीनियर हैं दक्ष से है? और इसके अलावा शिव जी जो है गुणावतार भी हैं, शिव तत्व जो है ये जीव तत्व से ऊपर है, हालांकि विष्णु तत्व भी नहीं है, विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में है शिव तत्व। तो तत्व की दृष्टि से शिव जी जीव तत्व से बहुत ऊपर है, जबकि ब्रह्मा जी जीव तत्व है। तो तत्व की दृष्टि से तो शिव जी ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन बहुत जूनियर हैं, बहुत छोटे हैं। तो अपने से बड़े व्यक्ति को अगर अपनी कन्या दे दी जाए तो आपका क्या विचार है, वो छोटा हो जाता है या छोटा नहीं होता है? कोई अपने से बड़ा व्यक्ति हो, अपने से ज्यादा सम्मानित हो, कोई अपने से ऊंचे पद में हो है? और आपने अपनी कन्या उसको अगर दे दी, उसको दामाद बना लिया, तो आपका क्या विचार है, अब वो छोटा हो गया या वो बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा, बड़ा ही रहेगा, है ना। जैसे बहुत से उदाहरण है इसके, बहुत से उदाहरण है, जैसे महाराज शांतनु ने जो है विवाह किया था, तो वो जो है मछुआरे की कन्या थी सत्यवती, है ना। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो जो है अब ससुर जो है अब जो है उनसे बड़ा हो गया उसका सम्मान करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, है ना। लेकिन दक्ष ने फिर ये मान लिया कि अब जो है ये मुझसे छोटे हो गए, क्योंकि मैं जो है इनका ससुर बन गया। और इस तरह से फिर जो है दक्ष ने शिव जी का भरी सभा में बहुत अपमान किया, केवल इस कारण से कि ये क्यों नहीं उठे जब मैं आया, तो ये क्यों नहीं उठे, सब लोग उठे, सब लोग खड़े हुए, ये क्यों नहीं खड़े हुए। तो ये जो है दक्ष का जो व्यवहार है ये बहुत ही उल्टा था, बहुत ही गलत था। और फिर आगे चल करके दक्ष को दंड मिला, और जैसा दंड मिलना चाहिए वैसा ही दंड मिला दक्ष को, है ना। लेकिन यहां पर चित्रकेतु की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं, तो चित्रकेतु का जो है कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं था। इसलिए आगे चल करके फिर होता क्या है कि शिवजी तो कुछ नहीं बोलते हैं, शिवजी हंस देते हैं। चित्रकेतु की बात पर शिवजी ने भी हंस दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। लेकिन पार्वती को बुरा लगा, पार्वती ने श्राप दिया चित्रकेतु को, और श्राप प्राप्त करके भी देखो कैसी स्थिर बुद्धि है चित्रकेतु की, कि उन्होंने जो है उस श्राप को स्वीकार कर लिया और बदले में पार्वती को भी श्राप नहीं दिया, है ना। जबकि वो श्राप दे सकते थे पार्वती को, बदले में पार्वती को श्राप नहीं दिया, श्राप को स्वीकार कर लिया, और ये भी कह दिया कि मेरे प्रारब्ध में था, जिस आपने जो श्राप दिया मुझे, तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन आप प्रसन्न हुई, मैंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो आप मुझ पर प्रसन्न हुई। इस तरह से जो है चित्रकेतु ने पार्वती को कहा और चले गए, और आगे जलकर के वो वृत्रासुर बने। तो वास्तव में तो वृत्रासुर की कथा समाप्त होने के बाद पलसी महाराज ने प्रश्न किया, वृत्रासुर की कथा तो हो चुकी और वृत्रासुर असुर के रूप में जो है इतने बड़े भक्त कैसे हुए, ये जो है आश्चर्य पलसी महाराज को हुआ कि एक असुर के रूप में इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है कोई। तब जो है पलसी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से और पलसी महाराज के प्रश्न के कारण हमको जो है ये कथा फिर सुनने को मिल रही है कि वृत्रासुर जो है पिछले जन्म में कौन थे, कैसे थे, कितने बड़े भक्त थे वो। तो यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी समाप्त हुआ और अब हम चाहेंगे आप लोगों की ओर से कोई चर्चा हो, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी नहीं, वैसे तो दान शब्द होता है एक सम्मान की बात होती है, दान और दया में अंतर है। अगर आप दया करते किसी के ऊपर तो वो छोटा होता है तो उस पर आप दया करते हैं, लेकिन दान देते हैं आप तो वो सम्मान पूर्वक दान दिया जाता है अपने से बड़े को, तो वो दान कहलाता है ना। और अगर आप जो है किसी को दान करते हैं लेकिन सत्कार नहीं करते, सम्मान नहीं करते उसका, तो तमोगुणी दान है। भगवान ने कहा ना, हरियस काले दानम अपात्र असत्कृतम अवज्ञात, सम्मान ना किया जाए दान देकर या अपमान करें अवज्ञातम, तब तो और भी बुरा हो गया कि अपमान कर दिया। यानी सम्मान भी अगर नहीं किया दान के साथ में तो वो भी जो है तमोगुणी। आप समझे, दान जो है सम्मान पूर्वक दिया जाता है, दान जो है श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दिया जाता है, जो भिखारी हैं उनको आप पैसा देते हैं तो उसको दान नहीं कहा जाएगा, उसको दया कहा जाएगा। आप समझे ना, दान करने की विधि होती है। अगर आप सम्मान नहीं करते, किसी का सत्कार नहीं करते तो दान नहीं कहलाता, ठीक है ना। लेकिन जहां तक विवाह की बात है, कन्या का विवाह है, वो कन्यादान किस मामले में, किस दृष्टि से कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो विचार करना होगा। लेकिन जहां तक विवाह की बात है कि कन्या का विवाह किया तो अगर वो अपने से छोटा है तो वो छोटा रहेगा दामाद बनने के बावजूद, लेकिन अपने से बड़ा है, सम्मानित है, तो वो बड़ा ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है अगर दामाद बन गया तो वो जो है फिर अपने से छोटा ही हो गया, बल्कि इस घटना के कारण अब समाज में जो है ये नियम बन गया है कि ससुर, कई समाजों में ऐसे देखा जाता है ससुर अब दामाद के पैर ही छूता है, हमेशा के नियम बन गया क्यों, दक्ष के कारण। तो कई हमारे भी घर परिवार में ऐसा है कि ससुर जो है अब पुत्र के भी पैर छूता है और दामाद के भी पैर छूता है, अब तो ये नियम ही बन गया। कहीं मतलब ऐसा ना हो कि लड़के जो है शरीर छोड़ दे है? तो हमेशा के लिए ऐसा नियम बन गया है, कई समाजों में ऐसा है कि ससुर जो है अपनी लड़की के पैर छूता है, दामाद के पैर छूता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। फलश्रुति कथा की जो फलश्रुति आती है तो वो उसमें जो है कभी भौतिक लाभ भी बताया जाता है और कभी आध्यात्मिक लाभ भी बताया जाता है, दोनों बातें हैं। तो जहां तक भौतिक लाभ है तो उसमें भी जो है भक्तों को प्रोत्साहित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि इसका जो है मतलब ये फल है कथा का, क्योंकि भौतिक चीज भी जो है अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें भौतिक लाभ नहीं चाहिए। आप समझे, तो भक्त लोग जो है लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी है ना, धन तो कितना धन मिले है ना, तो कोई विरक्त है वो भाई धन नहीं लेना चाहता, धन को छूना नहीं चाहता, वो तो ऐसे ऐसे करता है। प्रभुपाद जी कैसे करते हैं, ऐसे धन अगर आ रहा है तो ऐसे ऐसे करते हैं कि और चाहिए लोग धन को, है ना। तो धन को अगर भगवान की सेवा में लगाना आप जानते हैं तो आप जो है आपको जितना भी धन मिले वो कम है ना। तो प्रभुपाद के पास ऐसी विधि है, कि धन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो इसलिए कुछ उसमें दोष नहीं है। भौतिक लाभ भी जो है अगर प्राप्त हो रहे हैं, उनको आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि हमें साथ साथ भक्ति चाहिए। कुछ भी मतलब चीज मिले, भौतिक चीज मिले, है ना। जैसे कुंती महारानी ने मतलब ये प्रार्थना की, जन्म सुरेशमान अपमान, कि जन्म अच्छे ऊंचे कुल में जन्म या धन संपत्ति और विद्या और सुंदरता से व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है। एधमान मधापमान, कि आपको नहीं देख पाता है, ये तो उन्होंने कहा कुंती महारानी ने। लेकिन फिर ये नहीं कहा कि हमारा छीन लो आप ये भगवान से। कुंती महारानी के पास ऐसी सब चीजें हैं, धन संपत्ति है, विद्या है, सुंदरता है, है? सब कुछ है। तो कुंती महारानी ने ये नहीं कहा कि आप छीन लीजिए, हमको नहीं चाहिए, अभी हमें राज्य मिल गया तो हमें अब राज्य नहीं चाहिए। बल्कि ये कहा कि साथ साथ हमें विपत्तियां भी दीजिए, विपदाशंत, इसके साथ में विपत्तियां भी दीजिए, जिससे क्या रहेगा, हमारी आंखें खुली रहेंगी कि संसार विपत्तियों का स्थान है। लेकिन विपत्तियां भी कुंती महारानी मांग नहीं रही भगवान से, क्योंकि तो संसार विपत्तियों का है ही है। अगर कुंती महारानी भगवान से विपत्ति मांग रही है, क्या विपत्तियों की कमी है, है? क्या विपत्तियों की कमी है संसार में? आपके हाथ में चाकू कभी आती है, आप कभी भी विपत्तियां पड़ सकते हैं, है कि नहीं? कुंती महारानी जो है हस्तिनापुर में है, गंगा जी किनारे है, गंगा जी के तट पर है, कूद जाए गंगा जी में तो विपत्ति तो विपत्ति है, विपत्तियों का संसार है। भगवान से विपत्तियां हम मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन वो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे सामने विपत्तियां रहे, हमें दिखाई पड़ने विपत्तियां, विपत्तियां तो हैं हमारे सामने, हम देख नहीं पाते विपत्तियों को। जब कुंती महारानी कहती है विपदा संगता तत्र तत्र, तो हमें विपत्तियां दिखाई पड़े, नया बार हत्या विधान नहीं, भगवतो दर्शन हम यथात, जिसमें हमें आपका भी दर्शन हो। जब विपत्तियां दिखाई पड़ती हैं तो आपको, आप ही हमें दिखाई पड़ते हैं रक्षक के रूप में, तो हम आपका स्मरण करें कि आप ही हमारे रक्षक हैं। तो वास्तव में विपत्तियां मांगी नहीं जाती है, विपत्ति कोई मांगने की चीज थोड़ी है। जी हाँ हाँ, ये सत्य है जो कथा सुनेंगे, लेकिन अब इसमें क्या है ना कि इतना विवरण तो नहीं दिया गया कि कितने बार सुनेंगे। अगर जैसे लिखा है कि जो इस कथा को सुनेंगे उनको गौरांग प्रेम प्राप्त होगा, है ना, तो अब इतना डिटेल्स तो नहीं है। अभी तो फिर आपका प्रश्न बनता है कि कितनी देर तक सुनना है, कितने बार सुनना है, रोज सुनना है, जीवन भर सुनना है। इतना तो जो है ना विवरण अभी आपका आपका प्रश्न बनता है ना, इसमें तो इसमें प्रश्न बनता है कि हमने सुन लिया तो प्राप्त हो जाएगा। अगर अगर ऐसा भी है कि प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ये भी प्रश्न होगा कि कितने जन्मों के बाद प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं कितने जन्मों के बाद प्राप्त होगा, तो फिर वो भी है तो प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कोई दवाई है मान लो, तो इस दवाई के बारे में लिखा है कि भाई ये डायबिटीज की दवाई है, ये गोली है डायबिटीज की है। अब आपको प्रश्न उठता है क्या ये गोली खा लो तो ठीक हो जाएगा, है? आपकी जो है कितनी पुरानी बीमारी है, है ना, तो फिर आपको प्रश्न, आपका प्रश्न बनता है कि कितनी गोली खानी है, कितने बार खानी है, है? और फिर भोजन के बाद खानी है, भोजन के बाद पहले ही खानी है, खाली पेट खानी है, है ना, तो फिर आपका तो प्रश्न बनता है कि नहीं। जैसे चरणामृत में लिखा हुआ है, चरणामृत के बारे में, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। चरणामृत जो है रोज हम लोग बोलते ही हैं कि सर्वव्याधि विनाशनम, फिर आप और दवाइयां क्यों खाते हो? और कितनी बीमारियां हैं आपके शरीर में, सर्वव्याधि विनाशनम, लेकिन वो भी गलत नहीं है। सर्वव्याधि विनाशनम इसका मतलब ये है कि समस्त व्याधियों को दूर करने में चरणामृत की भी जो है अपनी कुछ शक्ति है, आप समझिए। तो चरणामृत जो है अगर आप लेते हैं तो इस दिशा में ये काम करता है, आप समझे। लेकिन अब व्याधि कितनी बलवान है, कितनी शक्तिशाली है, कि वो जो व्याधि है वो अगर नहीं दूर हो रही है तो वो अलग चीज है। लेकिन एक जो शक्ति है चरणामृत की तो है कि वो जो है मतलब उस दिशा में काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी चीज को खींच रहा हूं लेकिन दूसरी तरफ से खिंचाव ज्यादा है, तो मेरा खिंचाव तो है कि भाई अपनी तरफ खींच रहा हूं, लेकिन तो भी वो चीज जो है उधर खींची जा रही है, तो अलग बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि चरणामृत जो है मतलब चरणामृत में वो गुण नहीं है, चरणामृत में गुण है, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ यही है कि कुछ और भी अगर ज्यादा अगर वो बीमारी अपनी प्रबल है तो उसके लिए फिर आपको और दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी, फिर से बोलिए। माइक हैंड माइक
कृष्ण धन्यवाद। शिव जी ऐसा सब ऋषियों की सभा में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपने भार्या के साथ, ऐसा समझे कि वो बहुत अवधूत है, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं?
नहीं, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होने के कारण नहीं, इसको जो है दूसरे प्रकार से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है तो उन्हें कुछ होश नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्हें सब कुछ होश है। जैसे भगवान है, कृष्ण है, तो वे जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हम न बढ़ते हम जातु कर्म न करेंगे, अगर मैं सावधानी से अगर कर्म ना करूं तो मेरी देखा देखी मनुष्य लोग भी करने लगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य अपार्थ सर्वशा, तो भगवान चूंकि मनुष्य के बीच में अवतार लेते हैं तो अपने को मनुष्य ही घोषित करते हैं, मनुष्य के बीच में मनुष्य की तरह आचरण करते हैं और अपने को छिपा लेते हैं कि वे भगवान है और वे जो है मनुष्य की तरह आचरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं जो है मनुष्य के बीच में मैंने श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त कर लिया और अब मैं अगर ऐसा आचरण ना करूं तो जो लोग हैं वो वैसे करेंगे, श्रेष्ठ पुरुष को देख करके वैसे आचरण करेंगे। तो भगवान कृष्ण जो है, और भगवान की यही जिम्मेदारी है कि वे धर्म की स्थापना करने के लिए आते ही हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो स्वयं धर्म का पालन करते हैं और दिखाते हैं। भगवान कहते हैं बड़ी सावधानी पूर्वक अगर ऐसा आचरण ना करूं, है ना। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर कृष्ण ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं जो जैसे गोपियों के साथ रासलीला की, है ना, तो ये जो आचरण है ये फिर कहां तक उचित है? तो ये भी भगवान ने जो है आचरण किया तो बड़ी सावधानी पूर्वक किया, है ना। किस अवस्था में किया? बाल्य अवस्था। ये भगवान की जो है ये बाल लीलाओं के अंदर का दी है सब कुछ, जितनी भी लीलाएं हैं ब्रज की 11 साल की अवस्था तक जो भगवान ने की हैं, है ना, तो बाल लीलाओं के अंतर्गत हैं, जिसमें कि वो गुरु के घर भी नहीं गए, शिक्षित भी नहीं, अशिक्षित बालक है। अशिक्षित बालक है, कुछ भी मतलब करे तो उसका दोष नहीं माना जाता है, उसकी इंद्रियां भी विकसित नहीं होती हैं। तो सब जो है मनुष्य के समाज में मतलब कोई उत्पात नहीं पैदा हुआ कृष्ण जो कुछ भी किया। अब वो गोपियों के साथ में रासलीला करते समय उन्होंने अपना यौवन प्रकट कर दिया, गोपियां भी युवती हो गई, तो इनको तो मनुष्यों का समाज जान नहीं सकता ना, और देखा भी नहीं, मनुष्य के समाज ने देखा भी नहीं, कोई नहीं जान सका। अगर देखे तो आकाश में देवता लोग देख रहे थे, सिद्ध लोग देख रहे थे, वो आकाश में ही जो है दर्शक लोग थे, और पृथ्वी के मनुष्य को तो कोई देख नहीं सके, पृथ्वी के मनुष्य तो देख भी नहीं सके इस लीला को। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ऐसी हैं, और अगर कुछ मतलब ऐसी बातें आई भी सामने कि उन्होंने वस्त्र हरण किए और ये बातें अगर मानव लोगों के बीच में आई भी, तो कृष्ण इतने छोटे अवस्था के समय है कि वो कोई दोष नहीं माना गया, मनुष्यों के समाज में कोई दोष नहीं माना गया। लेकिन जब कृष्ण मनुष्यों के बीच में और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं तो फिर बड़ी सावधानी से आचरण करते हैं, बड़ी सावधानी से आचरण करते हैं। मतलब ये दिखाया उन्होंने कि अभी तो वो शिक्षित नहीं थे, है ना, जब शिक्षित हुए तो गुरु के गुरुकुल में गए, सांदीपनि मुनि से शिक्षा प्राप्त की, और अब वो मतलब जाने कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आचरण करना है, तब जो है वो उनका आचरण कितना शुद्ध है। जैसे कि भौमासुर की जो 16,100 जो कन्याएं थी, मतलब स्त्रियां थी जिनको भौमासुर ने कैद किया हुआ था, तो वो कृष्ण को पति बनाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने अपने माता पिता की आज्ञा के बिना उनसे ना तो विवाह किया ना स्पर्श किया, उनको द्वारका भेज दिया, सुरक्षित रूप से द्वारका भेज दिया। और फिर भगवान सत्यभामा के साथ स्वर्ग में गए, स्वर्ग में अपना जो काम करके आए द्वारका, फिर माता पिता की आज्ञा से और विधिवत विवाह किए उनके साथ में। तो भगवान जो है मतलब ऐसा आचरण करते हैं, तो मनुष्यों के रूप में मनुष्य की हैसियत से जब भगवान आचरण करते हैं तो बड़ी सावधानी से आचरण करते हैं कि कोई भी जो है मतलब कार्य ऐसा ना हो कि लोग जो है फिर वो सोचेंगे कि श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहा है तो हम भी करें। लेकिन जहां तक शिव जी की बात है तो शिव जी तो मनुष्य नहीं है, शिव जी की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग ही है। जहां यहां पर सिद्ध हैं, चारण हैं, जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में शिव जी का जो स्थान है वो ना तो कोई मनुष्य का है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई चारण, ना कोई देवता, उनका जो स्थान है वो क्या है, एक अलग ही है। आप समझ रहे? तो कृष्ण ने जब मतलब ये लीलाएं करी जिसको लगता है कि भाई शास्त्र के विरुद्ध था, है ना, तो वो मतलब ऐसी अवस्था में की कि जैसे छोटे बालक हैं वो चंचलता करते हैं इस तरह से की, है ना। लेकिन शिव जी जो है जो ऐसा आचरण कर रहे हैं कि पार्वती को गोद में बिठाए हुए हैं, आलिंगन कर रहे हैं, है ना, तो शिव जी जो है उस दृष्टि से कर रहे हैं कि वो इतनी ऊंची स्थिति में है कि शास्त्र का उनके ऊपर आदेश नहीं लगता है, उनके ऊपर किसी भी शास्त्र का आदेश नहीं लगता है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो ये जो स्थिति है शिव जी की, तो वो सब लोग समझ रहे हैं जो बैठे हुए हैं उनके उनके द्वारा सत्संग प्राप्त कर रहे हैं शिव जी के द्वारा, तो लोग समझ सकते हैं। यहां तक कि कोई मतलब जो बहुत ऊंची स्थिति में जो भक्त मतलब बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं तो वे भी जो है अप्रभावित रहते हैं, स्त्रियों के संग में वो भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये स्थिति जो है भक्तों में भी कई बार देखी जाती है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी हैं तो वो जो है नग्न है और स्त्रियों के बीच में चल रहे हैं, नग्न होकर के स्त्रियां भी वस्त्र धारण कर रही, स्त्रियों का भी मन इतना शुद्ध हो गया कि वो नग्न अवस्था में है, वो चल रहे हैं उनके बीच में, स्त्रियां भी नग्न अवस्था में है, वो वस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं, उनके प्रभाव से स्त्रियों का भी मन इतना शुद्ध हो गया। तो ये स्थिति जो है मतलब भक्ति में भी हो सकती है, लेकिन ये विधि नहीं है कि सामान्य लोगों के बीच में ऐसा किया जाए, क्योंकि सामान्य लोग करेंगे तो वो तो बिगड़ नहीं और उनका तो विनाश होगा। तो जो तो इसलिए जो है भक्त को ये सब समझना होता है इन सब बातों को। द्रौपदी के आंदोलन में भी मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्रियां और पुरुष जो एक साथ सेवा करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे उन्होंने गौड़ी मठ स्थापित किए, तो उनमें ब्रह्मचारी और सन्यासी केवल रहेंगे, स्त्रियों का तो कोई प्रवेश ही नहीं गौड़ी मठ में। लेकिन प्रभुपाद ने जब विदेशों में प्रचार किया तो उन्होंने देखा कि तो संभव ही नहीं है, तो स्त्रियों को और पुरुषों को साथ साथ सेवा करने का अवसर दिया प्रभुपाद ने। लेकिन प्रभुपाद ने जो है प्रार्थना की भगवान से कि अगर ये लोग जो है नियमों का पालन करेंगे तो रक्षा होगी। इसलिए प्रभुपाद के बताए हुए अगर नियम का पालन किया जाए तो जो है सुरक्षा है, नहीं तो बड़े कठोर नियम थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो गौड़ी मठ में जो थे भक्त लोग थे वो उनके बड़े कठोर नियम थे, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं आप मिल सकते, बातचीत नहीं कर सकते स्त्रियों के साथ में, लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन में ये जो है अनुमति मिली है। लेकिन इस अनुमति के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना है, जो कठोरता से करना है, तो सुरक्षा होगी। हाँ, और कोई आपका? अच्छा, पहले इन्होंने हाथ उठाया था। हाँ बोलिए।
तो जैसे शिवजी महाजन इन कथा से पता, एक महाजन है बड़ा महाजनों में से, तो फिर जैसे महाजन ही ऐसे कार्यकलाप करते हैं तो
हाँ ये प्रश्न तो है। इसलिए महाराज चित्रकेतु का बन रहा है, महाराज चित्रकेतु का ये प्रश्न बन रहा है। लेकिन फिर साथ साथ ये भी है कि अगर आपको नकल करनी है तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथा रुद्रो बीजम विषम, कि शिव जी ने विष भी पिया। अब समझे, शिव जी ने विष भी पिया और शिव जी ने जब विष पिया था तो पता है क्या मतलब हाल था, कि मतलब ये पूरा जगत जो है नष्ट हो गया होता, पूरा जगत नष्ट हो गया होता। वो जो शिव जो जो समुद्र मंथन से जो जहर निकल रहा था तो दसों दशाओं के जो प्राणी हैं वो नष्ट हो रहे थे। और समय शिव जी से प्रार्थना की सब देवताओं ने मिलकर के, तो देवता असुर सबके जीवन के लिए जो है संकट था वो जहर, तो शिव जी ने जहर भी पिया था। कितना जहर पिया था उन्होंने, उन्होंने तो मतलब अपनी हथेली में ऐसे ले लिया, लेकिन वो तो समुद्र की तरह मात्रा थी उसकी, उन्होंने अपने हाथे ले लिए बोला है ना, तो शिव जी ने जहर भी पिया। तो कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जब कुछ अलग से शास्त्र के अनुसार वो आचरण नहीं होता है और वो किया जाता है कुछ समय स्थान परिस्थिति के अनुसार, तो उसको फिर उस तरह से लेना चाहिए कि भाई अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जो है मतलब योग्यता है, हम नहीं कर सकते ऐसा, है ना। निश्चित त्यास था चरण मौढ़ यथा रुद्रोपिजम विषम, अगर मूर्खता पूर्वक अगर कोई व्यक्ति आचरण करेगा तो नष्ट हो जाएगा, आंसू माने तुरंत नष्ट हो जाएगा, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा अगर मूर्खता पूर्वक जो है कोई व्यक्ति नकल करता है। इसलिए नकल आप करो लेकिन मूर्खता पूर्वक नकल मत करो, है ना। नकल करने में भी अकल चाहिए, है ना। मूर्खता पूर्वक जो है नकल मत करो कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें, है ना। अब आपके पिताजी हैं वो सड़क पार कर रहे हैं, आप छोटे बच्चे हैं तो उनकी नकल करोगे तो दुर्घटना होगी, आप सड़क पार नहीं कर सकते, पिता सड़क पार करते हैं। तो ऐसी भी मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हमें ऐसा विचार करना होता है, जब शिव जी जो है अगर उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कहा तेसामित सुबचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरे, कि जो बातें उनके उपदेश के अनुसार हो उनके आचरण में हो वो हम आचरण करें, जिसमें वो हमें आज्ञा भी देते हैं कि हाँ ये करो, और वो भी करते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। इन जिन बातों में वो आज्ञा नहीं देते हैं, वो कर रहे हैं आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो आप मत करो, ठीक है ना। तो कुछ बातें मतलब ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें आज्ञा की आवश्यकता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो उनका तो यही कार्य है, उनका तो कार्य है धर्म की स्थापना करना, पालन करना, वो बहुत सावधानी से आचरण कर रहे हैं, वो मनुष्यों के समाज में है, मनुष्यों की ही अपने को मनुष्य ही मतलब दिखाते हैं, अपनी भगवता को छिपा करके भगवान जो है मनुष्यों के बीच में मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से आचरण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के आचरण में कोई दोष नहीं है, लेकिन शिव जी अगर आचरण कर रहे हैं तो वो अपने उस स्थिति के अनुसार आचरण कर रहे हैं। आप समझ रहे, जैसे कि वो अगर ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं तो सब लोग उनके बराबर आसन पर तो नहीं बैठ सकते, अगर ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं सब लोग नीचे आसन पर बैठे हुए हैं तो ये नहीं हो सकता कि भाई हम भी उनके बराबर ऊंचे आसन पर बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से उनको कुछ बातों में अधिकार है तो हम नहीं उनकी नकल कर सकते, तो अपना अधिकार भी देखना पड़ता है कि भाई हमारा अधिकार है कि नहीं है, उनको कुछ कहने का भी अधिकार है तो आपको कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको सोचने का भी अधिकार नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि चित्रकेतु की स्थिति ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने मतलब बोला, क्योंकि उनका जो अपना अनुभव था अपने अनुभव के अनुसार वो बोल रहे थे, तो शिव जी ने इसलिए बुरा नहीं माना कि वो अपने अनुभव के अनुसार बोल रहे हैं, तो कुछ गलत भाव तो नहीं है, दक्ष का जैसे गलत भाव था ऐसा गलत भाव तो नहीं है, अपने अनुभव के अनुसार बोल रहे हैं तो वो भी ठीक है, शिव जी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं था वो। पार्वती ने श्राप दिया तो वो भी मतलब ठीक था, एक प्रकार से ठीक था। अब इसमें ठीक था ठीक नहीं था इसका जो निर्णय है वो बड़ा मुश्किल है करना, ठीक भी था ठीक नहीं भी था। लेकिन ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कभी कभी कि कोई गलती नहीं होती, किसी की गलती नहीं होती, लेकिन दुर्घटना हो जाती है। गाड़ी चला रहे हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं, सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो भी दुर्घटना हो जाती है। तो ये होती है, और ये दुर्घटना फिर जो होती है ये प्रारब्ध के अनुसार है कि ऐसा होना था इसलिए हुआ। हाँ जी, अच्छा और किसी का प्रश्न? अच्छा आपका। हाँ
धन्यवाद गुरु जी। आपने बताया कि जैसे शिव जी मतलब उस स्तर के हैं या उनके पास योग्यता है, तो ये जो उनका आचरण था केवल किसी बात को दिखाने के लिए था कि वो ऐसा करने के योग्य हैं या उस स्तर के हैं या उनका प्रारंभ है, इसी प्रकार से समझा जाए
किसको जो है मतलब ऐसे समझना चाहिए कि शिव जी हैं पार्वती हैं ये जीव तत्व तो नहीं है ना। शिव तत्व जो है ये विष्णु तत्व से ही मतलब आता है, दूध से जैसे दही बनता है ना। तो जैसे भगवान है विष्णु है तो जो है लक्ष्मी के साथ हैं, भगवान लेते होंगे लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं उनके, है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी कोई उचित तो नहीं है, लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण साथ में है ना। तो ये जो स्थिति है तो उसी प्रकार की स्थिति शिव पार्वती की भी है कि वे जो है विष्णु तत्व तो नहीं है, कुछ भौतिकता मिली हुई है, लेकिन वो जीव तत्व तो नहीं है, ठीक है ना। और उनका जो जो आनंद है जो सुख है वो ये जो सामान्य व्यक्ति का जो स्त्री पुरुष के संबंध से जो होता है वो नहीं, उससे ऊपर है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते राधा कृष्ण की तरह वो जो है मतलब उतना ऊंचा धरातल है, लेकिन तो भी वो मनुष्यों के धरातल पर नहीं है, ठीक है ना, मनुष्यों के धरातल पर नहीं है। हाँ जी,
तो उनके मतलब इस व्यवहार से ऐसे आचरण से जन सामान्य को क्या संदेश जाएगा?
जन सामान्य को जो है यही संदेश मिलता है कि अगर वो भोग रहे हैं वो भोगता है तो वो भोग सकते हैं, हम भोगता नहीं है। जैसे हम कहते हैं भोक्तारम कृष्ण भोक्ता, तो यहाँ पर राधे का रमण है ना, तो वो गोपियों के भोक्ता हैं, वो राधा रानी के भोक्ता हैं, हम तो नहीं भोग सकते, ठीक है ना। ये संदेश तो यही है कि वे जो है कोई सामान्य जीव नहीं है, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वर तत्व भी हैं, वो जीव तत्व नहीं है। ईश्वर तत्व जो है अपनी इच्छा के अनुसार कभी भोगी बन जाते हैं या कभी त्यागी बन जाते हैं, कभी वो भोग में लिप्त हों कभी त्याग में लिप्त हों, तो उनकी अपनी इच्छा होती है क्योंकि वो ईश्वर है। उनके लिए आप ये नियम नहीं लगा सकते कि भाई आप अगर भोगी हैं तो फिर आप इतना त्याग क्यों कर रहे हैं, या इतने बड़े त्यागी हैं तो फिर भोग क्यों कर रहे हैं। तो समय के अनुसार जो है वो कभी भोग में लिप्त हों कभी त्याग में लिप्त हों, तो ये उनकी जो है अपनी इच्छा होती है क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो आप शास्त्रों में कथाओं में सुनते हैं जैसे पार्वती यहां पर महाराज चित्रकेतु को श्राप देने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिए, तो इनका पार्वती का श्राप फलीभूत हुआ, ब्रह्मा जी का वरदान जो हिरण्यकश्यप को मिला वो फलीभूत हुआ। किन शक्तियों के अंतर्गत ये जो श्राप या वरदान है उनके जो शब्द होते हैं ये सिद्ध होते हैं उपाते हैं?
किन शक्तियों के अंतर्गत ये जो साप और वरदान देने की जो शक्ति है तो आदि तो भगवान से ही है, भगवान से ही आती है साप और वरदान देने की शक्ति, और कुछ मनुष्य में अगर आती है तो उनकी तपस्या से आती है, जब उनकी मतलब बहुत तपस्या होती है तो उनके पास वो शक्तियां आती है। तपस्या तो कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसमें जो है सांप वरदान देने की शक्ति भी जो है आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जैसे नंद महाराज थे, हमेशा ब्राह्मणों से जो है आशीर्वाद लिया करते थे कृष्ण के लिए। कोई भी अनिष्ट हो, कृष्ण के ऊपर कोई खतरा आ गया, तो वो तुरंत जो है ब्राह्मणों को दान देते थे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तो अगर ब्राह्मणों अगर आशीर्वाद देंगे तो उनकी जो बात है वो कभी असफल नहीं होगी, गलत नहीं होगी। तो ब्राह्मणों के मुंह से हमेशा बुलवाया करते थे कि मेरे पुत्र को जो है चिरायु का जो है आप वरदान दीजिए कि चिरायु हो, तो हमेशा इस तरह से। तो इसलिए हमारा भी जो है फर्ज होता है कि भक्तों से वैष्णवों से मतलब आशीर्वाद लें कि हमें हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, हमसे अपराध ना हो, तो ये जो है सबका फर्ज होता है। प्रदन तो याद
एक जो कथा आती है ना, पहले सुनिए कि गुरु जो है कथा जैसे कि यहाँ पे चले जाते हैं तो सारे शिष्य देख के भाग जाते हैं, तो इसी प्रकार की कुछ परीक्षा कह सकते हैं कि
इनका इनका सुझाव है कि एक गुरु थे तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि शिष्यों को अपने साथ ले गए और एक वेश्या घर में गए, है ना। और वेश्या से उन्होंने मतलब बातचीत की कि छज्जे पर जो है मैं मतलब जा रहा हूं तुम्हारे घर के छज्जे में, और तुम भी आओ, और वो ग्लास में जो पानी रंगीन पानी है वो तुम मुझे पिलाना, तो वो शिष्य जो मेरे देखेंगे। तो उन्होंने जो है मतलब शिष्यों ने जो है मतलब देखा, गुरुजी ने कहा तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी आता हूं, और वैसे घर में गए और छज्जे में आकर के वैसे जो है रंगीन पानी जो है उनको पिला रही है, गुरुजी पी रहे हैं। और शिष्यों ने कहा ये गुरुजी ऐसे गुरुजी हैं, अरे छोड़ो छोड़ो ये बेकार, सब चले गए। एक जो शिष्य था, और फिर बाद में गुरुजी रात में रुक गए, वैसे घर में रुक गए, सो भी गए, है ना। सवेरे देखे तो एक शिष्य फिर भी पड़ा हुआ था दरवाजे में, तो गुरुजी बोले अरे सब लोग चले गए, तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारे सामने तुमने देखा ना अपने सामने मैंने क्या किया है। तो वो शिष्य बोला कि गुरुजी आपके सिवा और मेरा कोई है नहीं जीवन में, आप ही अभी खड़े। तो उसको उन्होंने अपना शिष्य माना, मतलब वो परिचय लेना चाहते कि भाई मेरे बाद और आगे कौन गद्दी पर बैठेगा यानी गुरु बनेगा, तो उसको जो है मतलब अपना शिष्य माना या अपने अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन ये जो बात है, ये गुरुजी ने जो परीक्षा ली अपने शिष्यों की, तो ये विधि नहीं है कि हमेशा कोई गुरु इस तरह से करे, लेकिन ये तब संभव है कि वो जो गुरु थे जब परीक्षा ले रहे थे बहुत साल हो गए गुरुजी जो है मतलब के चरित्र में उनका विश्वास बन गया, तब अगर वो ऐसा करें तो फिर जो है शिष्य को सोचना चाहिए कि हो सकता है इसमें कुछ और कारण हो, ये पतन इनका पतन नहीं हो सकता, आप समझे। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत सालों से हैं और फिर अगर उसके साथ कुछ विपरीत आचरण हो तो आप कुछ आश्चर्य कर सकते हैं, कुछ शंका कर सकते हैं, लेकिन वो शंका जो है वो निश्चय भी नहीं बदलना चाहिए कि नहीं गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भक्त है, बहुत सीनियर है और बहुत सालों से नियमों का पालन कर रहा है, बहुत स्थिर है, अगर उसके द्वारा कोई अगर उल्टा अगर आचरण होता है तो एकदम से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बिल्कुल बोगा से तो बेकार है, एक बात को देख करके आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ये बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु जो है शिष्यों की परीक्षा ले सकते हैं जब वो देखें कि कितने सालों से गुरुजी जो है मतलब ऊंचे धरातल पर बने रहे, है ना, और फिर अगर अचानक कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो संदेह हो सकता है, लेकिन संदेह को मतलब संदेह तक ही रखना चाहिए, उसको निश्चित नहीं करना चाहिए, निश्चित है तो बेकार है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है छोड़ो छोड़ो, कितने सालों से वो जो है मतलब लगे हुए इसमें, तो इसमें कुछ और रहस्य हो सकता है, तो पूरा रहस्य मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, कि इसमें मतलब क्या रहस्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो जानने की कोशिश करना चाहिए हमको। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा मन देव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। हरे कृष्ण।